नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कृषक मंच और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त यानी पुष्कर। तो कृषक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषक मंच में हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं खेती के विषय में और पशुपालन के विषय में। तो आज हम चर्चा करेंगे धान की फसल में उर्वरक एवं जल प्रबंधन। तो जैसा कि आपने सुना कि धान की फसल में हमें उर्वरक की मात्रा और जल प्रबंधन कैसा करना चाहिए, इसके लिए आज हमारे बीच में है कन्हराज शर्मा जी। कन्हराज शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
कन्हराज जी, जैसा कि जानते हैं आप कि धान की फसल वैसे बहुत मेहनत लेती है, हमारे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो धान की फसल से इतना लगाव है हमारे किसानों को कि वो धान की फसल जरूर करते हैं, लेकिन इसमें उनको उर्वरक की कितनी मात्रा कब कब देनी होती है आज आप उनको बताएंगे। और जल प्रबंधन, जैसा कि बहुत ही समस्या है ये कि जल प्रबंधन के विषय में कि कभी कभी तो फसलें सूख जाती हैं जल के अभाव में, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई जल प्रबंधन किस तरह करें जिससे कि अधिक पैदावार ले सकें। शर्मा जी,
देखिए पुष्कर जी, जहाँ तक धान की फसल की बात आती है तो इसमें उर्वरक और जल प्रबंधन
जी
ये दो मुख्य बातें हैं जिसे हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान देते हैं।
समस्या भी है शर्मा जी।
जी देखिए, किसी भी फसल में जब हम समस्या सोच लेते हैं
जी,
तो मनोबल गिरता है। समस्या नहीं
जी जी,
ये फसल की हमारे आवश्यकता होती है
जी जी जी।
तो कौन सी फसल है, उसमें किस प्रकार के हमें खादों का प्रयोग करना है
जी,
जल का प्रबंधन किस प्रकार से करना है
जी।
कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए
जी जी,
और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें जल भराव की स्थिति आनी चाहिए
जी,
उनमें नमी की अधिक मात्रा होती है
जी।
तो धान चूंकि खरीफ की फसल है हमारी
जी जी,
और धान को जल का कीड़ा कहा जाता है
जी जी,
पानी
बहुत अधिक पानी लगता है धान की खेती में,
धान को पानी का कीड़ा भी कहते हैं
जी।
तो ये साफ स्पष्ट होता है कि धान की फसल करने के लिए
जी
हमको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, अधिक पानी की आवश्यकता होगी
जी जी।
तो इसमें जल प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है, वहाँ ये ध्यान देना चाहिए
जी,
हमें उस क्षेत्रफल का चुनाव करना चाहिए
जी,
हमारे किसान भाइयों को उस खेत का चुनाव करना चाहिए जहाँ की मिट्टी में पानी अधिक समय तक रुक सके और जल के ठहराव की व्यवस्था होनी चाहिए
जी
जी। अगर जल के रुकने की व्यवस्था नहीं है तो पानी रुक नहीं पाएगा खेतों में
जी।
तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को अपने खेत की मेड़बंदी आवश्यक है
जी,
वो मेड़बंदी कर दें जिससे कि उसमें जल भराव हो। तो ये जो है जल प्रबंधन की जो बात रही, और धान की फसल में उर्वरक आपने पूछा
जी,
तो उर्वरक तो हर प्रकार की फसल में आवश्यक होता है
जी,
उसकी आवश्यकता के अनुसार
जी,
क्योंकि आवश्यकता से अगर हम कम उर्वरक देंगे
जी
तो भी फसल का सही उत्पादन हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलेगा, और अगर अधिक उत्पादन दे देंगे
जी
तो ऐसा नहीं है कि मुझको अधिक उत्पादन मिलेगा बल्कि मेरी फसल उससे प्रभावित हो जाएगी। तो जिस प्रकार से मनुष्य ज्यादा खा लेता है तो बीमारी हो जाती है और कम खाता है तो कमजोर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी फसलें होती हैं
जी।
अगर इनको हम इनकी आवश्यकता से अधिक उर्वरक देते हैं तो
नुकसान उठा जाएंगे हमारे,
उसका कुप्रभाव हो जाता है, और अगर कम देते हैं तो फिर हमारी फसलों का सही विकास नहीं हो पाता है
जी।
तो हमको ये एक मुख्य बिंदु है कि हमको खाद और उर्वरक
जी
कितनी मात्रा में कब कब देनी चाहिए
जी।
आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया था उर्वरक, तो उर्वरक जहाँ तक रासायनिक उर्वरक की बात है
जी,
तो इसको तो हम इसमें बराबर मात्रा को हम ध्यान दें, जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है
जी,
फास्फोरस है
जी जी,
तो ये चीजें जो है हमको धान में मुख्य रूप से डालना चाहिए। अब किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन की कितनी मात्रा हमको कब देना है
जी,
जी इस चीज का ध्यान रखें। अब ये नहीं कि अगर हमको एक हेक्टेयर में जितनी खाद डालनी है एक ही बार में डालनी
जी,
ऐसा नहीं, ऐसा करना
है कई कई बार डालना पड़ता
जी। हाँ, इसका कितनी मात्रा हमको किस समय देनी चाहिए, हमारे किसान भाइयों को इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही इसके यदि हम धान की फसल में गंधक
जी
या जिंक
जी जी
ये रासायनिक उर्वरक ही कहा जाएगा इनको
जी जी,
अगर हम इनका उपयोग करते हैं
जी जी,
तो हमारी जो धान की फसल है उसमें बढ़िया होता है, उसका विकास जो है वो अच्छा होता है। जिंक का काम है कि वो हरियाली जो है वो लाता है और रोगों से भी बचाव करता है। तो इस प्रकार से हमको उर्वरकों का प्रयोग जो है कि उसमें सावधानी बरतनी चाहिए।
तो शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। जैसा कि भी आपने बताया कि उर्वरकों की मात्रा जो है, हमारे किसान भाई अगर सही से नहीं किए तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, फायदे की जगह उनको बहुत घाटा हो जाता है। तो हम सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि हमारे किसान भाई अगर धान की खेती कर रहे हैं तो उनको उर्वरक की मात्रा और उसके प्रयोग की विधि भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएंगे। शर्मा जी
देखिए, पुष्कर जी आपने उर्वरक की मात्रा के बारे में जो बात की है
जी,
इसका सही आकलन तो मिट्टी का परीक्षण करने के बाद ही हो पाता है
जी जी।
अगर हमारे किसान भाई
जी
समय समय पे एक फसल, जैसे हमको हमारे किसान भाइयों को धान की फसल लेनी है तो धान की फसल उसमें रोपने से पहले
जी
अगर हमारे किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करवा लेते हैं विशेषज्ञों से
जी,
तो हमारी मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व अधिक है, कौन सा पोषक तत्व कम है
जी,
या किसकी मात्रा बहुत ही कम है
जी,
ये सारी जानकारियां हमारे किसान भाइयों को मिल जाती हैं। तो मिट्टी की जांच कर लेने से कौन सा पदार्थ हमारे मिट्टी में उपलब्ध है
जी जी,
क्या नहीं है
जी,
इसका ज्ञान हो जाता है
जी जी,
तब हम उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग जो है कर पाते। अब मिट्टी की जांच के अभाव में हम उर्वरक की सही मात्रा जान नहीं पाते हैं
जी जी,
इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो मृदा परीक्षण
सबसे पहले वो मिट्टी की जांच करवा ले अपने नजदीकी किसान केंद्र से, किसान सहायता केंद्र हो या
शिक्षा इकाइयां
किसी विश्वविद्यालय हो, इस तरह जगह जाकर के किसान भाई पहले मिट्टी का परीक्षण करवा ले
जी जी। मिट्टी का परीक्षण करवा लेने से फायदा होता है कि हमारी मिट्टी में कौन सी ऐसे पदार्थ हैं जो कम हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जिनकी पर्याप्त मात्रा है, तो उस अनुपात में हम जो है उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और मिट्टी की जांच प्रायः आम तौर पे धान की पौध की रोपाई करने से पहले हम करवा लें, क्योंकि जो शुरुआत में हम उर्वरक डालते हैं वो रोपाई के समय डालते हैं
जी।
तो हमारे देखिए किसान भाई प्रायः धान की रोपाई करते समय खाद डाल देते हैं खेतों में, उर्वरक डाल देते हैं
जी।
तो ऐसे में अगर रोपाई के पहले हम मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो हमको सही जानकारी मिल जाती है
जी।
और अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि मृदा परीक्षण हमारे किसान भाई नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें उर्वरक, चूंकि वो खेती करते हैं उनके पास अपना अनुभव होता है तो वो अपने अनुभव के आधार पे उनको उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जब उनको आवश्यकता समझ में आए तब उनको उर्वरक जो है वो देना चाहिए। और
मैं जहाँ तक आपका अनुभव है शर्मा जी, मैं बांटना चाहूँगा किसानों को कि आपके अनुभव क्या कहते हैं कि कितनी मात्रा होनी चाहिए उर्वरकों की।
देखिए, मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये खादें हम डालते हैं
जी।
अब इसमें जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमको यूरिया से मिलता है
जी।
यूरिया खाद
जी जी।
जो है इससे हमें नाइट्रोजन मिलता है।
अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हमारे किसान भाई उसमें यूरिया का प्रयोग करें।
यूरिया का तो प्रयोग करना ही है
जी।
लेकिन किस मात्रा में करना है मैंने ये बात बताई थी। तो जैसे नाइट्रोजन है तो ये हमको यूरिया से मिलती है और यूरिया में मात्र 46% ही नाइट्रोजन होता है
जी जी। किसान भाई को सुनेंगे कि 46% ही यूरिया में नाइट्रोजन होता है
जी। तो यूरिया खाद में जो है नाइट्रोजन केवल 46% होता है, तो हमें नाइट्रोजन के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है
जी जी।
है ना, ये जैसे हमको उसमें नत्रजन कितना डालना है जो मात्रा बताई जाती है, तो उसको वो बोरी के हिसाब से देखें कि एक बोरी में 50 किलो खाद आई तो उसमें 46% ही मात्रा हुई, तो इस प्रकार से जब वो खाद कम करेंगे तो नत्रजन की मात्रा उनकी कम होगी, तो उसका वो ध्यान रखें।
किसान भाई ये ना समझे कि अगर एक बोरी हम एक कुंटल अगर यूरिया डाल रहे हैं तो एक कुंटल नाइट्रोजन हमारे खेत में पड़ गया,
नहीं नहीं ऐसा नहीं
जी, इसमें 46% ही होता है
जी। और फास्फोरस है, पोटास है, तो इसके जो स्रोत हैं, अब जैसे फास्फोरस है तो ये सुपर फास्फेट से हमको मिल जाती, सिंगल सुपर फास्फेट है, और ये पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास है, तो इनकी पूर्ति कर लेने से हमको जो है इनको हमको अगर मिला लेते हैं हम आपस में तो जो डीएपी की कमी होती है वो हमको मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाइयों को खादों का उपयोग जो है वो करना चाहिए। अब सिंगल सुपर फास्फेट में केवल 16% फास्फोरस होता है और डीएपी में 46% फास्फोरस होता है।
कहने का मतलब आपके कि सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है और डीएपी में 46% फास्फोरस होता है
जी, और 18% जो है वो नाइट्रोजन होता है
जी जी।
तो इस प्रकार से हमें इन खादों की, इन रासायनिक उर्वरकों की एक उचित मात्रा जो हमारी फसल को आवश्यक है, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं, उस हिसाब से हमको खादों का प्रयोग जो है करना चाहिए। और रोपाई के समय हमें नत्रजन की आधी मात्रा ही प्रयोग करनी चाहिए, जैसे हमारे खेत को जितनी नत्रजन की आवश्यकता है तो पूरी नत्रजन की मात्रा एक ही बार में न दे करके रोपाई के समय हमको जो है
आधी मात्रा
जी नत्रजन की आधी मात्रा ही देनी चाहिए, शेष मात्रा को हम बाद में दो बार में दें तो उस नत्रजन का पूरा पूरा उपयोग हमारी फसल में कर पाते।
तो शर्मा जी, जैसे कि आपने उर्वरकों की विधि और मात्रा के विषय में आपने बताया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कई चीजें बताई, कई तरह के उर्वरकों के नाम गिनाए, इसमें हमारे किसान भाई भ्रमित हो जाएंगे, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि धान की फसल के लिए पोषक तत्वों की मात्रा जो होनी चाहिए उसको आप सिंचित दशा में और असिंचित दशा में दोनों में कितना करें, और कौन कौन सी किस्में, कौन कौन सा उर्वरक और कितनी मात्रा में किस विधि से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप हमारे किसान भाइयों को बताइए।
देखिए, आपने सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए जब पूछा
जी,
तो हमने आपको पहले भी बताया था कि फसलों की आवश्यकता के अनुसार जैसी परिस्थितियां बनती हैं हम खाद का प्रयोग उसी अनुपात में करते हैं। अब असिंचित दशा है तो हमारे किसान भाइयों को 60 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर प्रति 10 बीघे में असिंचित दशा में हमारे किसान भाई जो है प्रयोग करें। और सिंचित दशा में भी खादों के प्रयोग की, उर्वरकों के प्रयोग की दो स्थितियां बनती हैं
जी।
एक शीघ्र पकने वाली प्रजाति है, उसमें हमको दूसरी मात्रा अपनानी पड़ती है
जी।
कुछ प्रजातियां धान की ऐसी हैं जो मध्यम देर से पकने वाली जातियां होती हैं, वो ना तो बहुत जल्दी पकती हैं और ना बहुत देर से, तो उसके लिए हमें खादों का प्रयोग दूसरी मात्रा से करना पड़ता है
जी।
और एक प्रजाति जो काफी लंबा समय ले लेती है तो उसके लिए खाद की मात्रा अलग होती है
जी।
और कुछ सुगंधित किस्में, संकर किस्में हैं
जी जी,
या उसरीली भूमियों के लिए भी कुछ प्रजातियां आप जो है हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने डेवलप की हैं, जल भराव की स्थिति में भी जो है फसलें अब कैसे उगाई जाएं, उस प्रजाति का भी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, कृषि वैज्ञानिकों ने किया है
जी।
तो इन सबके लिए अलग अलग खादों की मात्रा होती है। अब जैसे अगर शीघ्र पकने वाली प्रजाति है तो इसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन सिंचित दशा में, मैं बता रहा हूँ, सिंचित दशा में अगर शीघ्र पकने वाली जाती है तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन
जी,
50 किलोग्राम फास्फोरस
जी,
50 किलोग्राम पोटास
जी
और 20 किलोग्राम जिंक
जी
की मात्रा हमको देनी है। और अगर मध्यम देर से पकने वाली जाती है
जी,
मध्यम देर से पकने वाली धान की हमारी प्रजाति है
जी,
तो उसके लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता जो है हमको मध्यम देर से पकने वाली जो प्रजातियां धान की उनके लिए होती है। और अगर देर से पकने वाली प्रजातियां हैं तो उनके लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जिंक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें आप देखें कि देर से जो पकने वाली प्रजातियां होती हैं उसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देते हैं
जी,
लेकिन फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, इसकी मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं।
ये सब सिंचित दशा में हमारे किसान भाई अपने उर्वरकों का प्रयोग करें।
सिंचित दशा में देर से जो पकने वाली प्रजाति होती है धान की उसके लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक जो है
जी
का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। और जैसे संकर किस्में हैं धान की या सुगंधित जो किस्में हैं उनके लिए जो है लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता वहाँ भी जो है पड़ती है। और यदि जलभराव की स्थिति है, हमारे किसान भाई जहाँ पे अपने धान की फसल कर रहे हैं वहाँ जलभराव की स्थिति, अगर वो तराई इलाका है
जी,
और वहाँ जलभराव हो जाता है
जी,
तो ऐसी दशा में उर्वरकों का प्रयोग कम होना चाहिए
जी।
ऐसी दशा में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अलग अलग
क्षेत्रों में
जी हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जमीन के हिसाब से हमको जो है खाद की उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो इस बात का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए,
नहीं तो
जहाँ पे वो धान की फसल ले रहे हैं
जी,
वो भूमि उनकी कैसी है, वो जलभराव वाली भूमि है या सिंचित दशा में है या सिंचित दशा में है, इस चीज का हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए।
नहीं, जैसा कि भी आपने जलभराव वाले क्षेत्रों के विषय में आपने बताया कि नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 30 किलो और जिंक 20 किलो, लेकिन अगर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में हमारे किसान भाई अगर धान की बुआई कर रहे हैं
जी,
तो उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए उर्वरकों?
देखिए, मैंने बताया था कि क्षेत्रों के हिसाब से खाद का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए
जी।
जैसे अभी मैंने जलभराव के बारे में आपको बताया था, लेकिन जैसे बाढ़ ग्रस्त अगर क्षेत्र है
जी,
जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे किसान भाई प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम जिंक का प्रयोग करें तो उनको अच्छी उपज मिलेगी। और यदि एक दशा
उसरीली भूमि हो, अगर मान लीजिए
जी
उसरीली भूमि,
हाँ,
तब हमारे किसान भाई कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे?
देखिए, उसरीली भूमि में कुछ प्रजातियां विकसित किया है हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने
जी,
और उन प्रजातियों को हमारे किसान भाई उसरीली भूमि में भी बो करके अच्छी उपज ले रहे हैं
जी।
अब उसरीली भूमि में अगर हमारे किसान भाई धान की फसल लेते हैं
जी,
तो उन्हें लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस
जी,
40 किलोग्राम पोटास
जी
और 40 किलोग्राम जिंक
जी,
जिंक की आवश्यकता उस रीली भूमि में थोड़ा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जिंक का काम है फसल में, पौधे में हरियाली लाना
जी,
तो अगर उस रीली भूमि है तो उसमें जिंक की मात्रा जो है वो हमारे किसान भाइयों को बढ़ा देनी चाहिए जी, और पोटास की मात्रा थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, अगर 60 किलोग्राम फास्फोरस डाल रहे हैं तो हमको 40 किलोग्राम ही पोटास डालना चाहिए और 40 किलोग्राम जिंक डाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से उसरीली भूमि में अगर हम इस मात्रा में खाद का प्रयोग करते हैं तो हमको अच्छी फसल मिल जाती है, पैदावार मिल जाती है
जी। شرما جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دھان کی کھیتی اکثر جل کے اوپر، پانی کے اوپر اور اربرکوں پر بھی ہوتی ہے، تو ہمارے کسان بھائی اگر اچھی فصل لینا چاہیں دھان کی، تو جل پربندھن ان کو کس طرح کرنا چاہیے؟ جیسے کہ بیچ بیچ میں کتنی ماترا میں ان کو پانی دینا چاہیے کیا، اور کتنی بار سینچائی کرنا چاہیے، اور کب کب کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمارے کسان بھائیوں کو تھوڑی جانکاری دیجیے۔
دیکھیے پشکر جی، جل پربندھ میں نے شروع میں بتایا کہ دھان کی فصل کے لیے بہت آوشیک ہوتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا تھا، ہمارے کسان بھائیوں نے دھیان دیا ہوگا، بہت پراچین کہاوت ہے کہ دھان کو پانی کا کیڑا کہتے ہیں۔ تو اس سے اسپشٹ سا بات صاف ہوتی ہے کہ دھان کی فصل میں پانی ہمیشہ پریاپت ماترا میں بنا رہنا چاہیے۔ اب پانی بنا رہے کھیت میں، اس کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو وہ کھیت جہاں پر وہ دھان کی فصل لگا رہے ہیں، اس کی انہیں میڑبندی وشیش روپ سے کرنی چاہیے، اونچی میڑے بنانی چاہیے جس سے کہ پانی کھیتوں میں رک سکے۔ اور کب کب پانی دینا چاہیے، تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ روپائی کے سمے تو پانی کھیت میں رہتا ہی ہے، لیکن کچھ وشیش اوستھائیں ہیں جب ہمیں کھیتوں میں پانی اوشیہ رکھنا چاہیے۔ جیسے روپائی کے لگ بھگ ایک سپتاہ تک کھیتوں میں پانی ہونا چاہیے، اس کے بعد جب ہماری دھان کی پودے میں کلے پھوٹنے کا سمے ہو، جب اس میں سے نئے نئے کلے نکل رہے ہیں، بیاس جب اس میں آ رہا ہو، تب کھیتوں میں پانی کا ہونا بہت آوشیک ہوتا ہے۔
ڈرائی کر دیں ہماری کسان
جی، اور جب بیاس کے بعد جب ہمارے دھان گلاس میں ہوتے ہیں، جب ان کی بال آنے کو ہوتی ہے،
نکلنے لگتی ہے
جی، تب کھیتوں میں نمی پریاپت ماترا میں ہونی چاہیے، تب کھیتوں میں پانی جو ہے وہ بھرا ہونا چاہیے۔ اور جب ہماری بال میں دانے بننے کا سمے ہو، جب دانے بن رہے ہوں، اس اوستھا میں کھیتوں میں پانی اوشیہ ہونا چاہیے۔ ایسی دو تین دشائیں ہیں، جیسے کہ روپائی کے ایک سپتاہ بعد تک، پھر کلے پھوٹتے سمے، پھر بال نکلتے سمے،
اور جب بالوں میں
پھول آ جائیں، بالوں میں
آنے لگے، دانے بننے لگے، تب سینچائی کر دینا چاہیے ہمارے کسان بھائی۔
بال میں پھول بنتے سمے اور دانے آتے سمے ہم کو وشیش روپ سے پانی جو ہے وہ کھیتوں میں رکھنا چاہیے، ہمارے کسان بھائیوں کو اس کا دھیان دینا چاہیے۔ اور جہاں تک ادھر انیک کرشی ویگیانک ہیں اور وشودیالے کے کرشی ویگیانک ہیں، یہ لوگ برابر پریکشن کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں سمے سمے پہ پیپر میں اور تمام پترکاؤں میں بھی لیکھ اور جانکاریاں ہمارے کسی ویگیانک دیتے رہتے ہیں۔ اور تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر دھان کی فصل میں پرایہ پانی بھرا رہے، یعنی ہمیشہ اگر اس میں کچھ نہ کچھ پانی بھرا رہے، تو جو ہے دھان کی فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی پانی ہمیشہ بھرا ہونا چاہیے، یا جب ہمارے کسان بھائی دیکھیں کہ اب میرے دھان کی فصل میں پانی نہیں دکھ رہا ہے سطح پہ، جب اس میں نمی بنی رہتی ہے، لیکن اگر پانی سطح پہ نہیں ہے، اوپر پانی نہیں ہے کھیت میں، تو ترنت پانچ سات دن کے انترال پہ جو ہے ہمارے کسان بھائیوں کو دھان میں پانی دے دینا چاہیے۔ جب چونکہ برسات اب ادھر کم ہو رہی ہے، ایسے میں ہمارے کسان بھائیوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے دھان کی فصل کے لیے، تو ان کو ایک نیمت انترال پہ، جیسے پانچ دن سات دن کے انتر پہ جو ہے پانی دھان کی فصل میں اوشیہ دے دینا چاہیے۔ لیکن ان کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر برسات ہو جائے اس بیچ میں، تو ہمارے کسان بھائیوں کو تھوڑا سا رک جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس برسات کے دوران ہی وہ پانی دے دیتے ہیں فصل میں، تو ان کا پانی وہ بیکار جاتا ہے، اور اس میں ان کا پیسہ بیکار ہوتا ہے، ان کی محنت بیکار جاتی ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو پانچ سے سات دن کے انترال پہ دھان کے کھیت میں پانی دیتے رہنا چاہیے، اور اگر اس بیچ برسا ہو جائے تو پھر یہ انترال، یہ گیپ جو ہے تھوڑا سا
کسان بھائی بنا لیں۔
جی جی، ہاں، تو اس طرح سے جو ہے ہمارے کسان بھائیوں کو धान की फसल में जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उनका पानी जो है वो बेकार न जाए और उस जल का पूरा पूरा प्रयोग जो है वो हमारे किसान भाइयों की फसल को मिले, इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए।
तो कर्मराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम में आप आते रहेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहेंगे।
हमारी तरफ से भी हमारे सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए।
तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी आपने सुना, धान की फसल में उर्वरक एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया कि उर्वरकों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सिंचित दशा में कैसी होनी चाहिए और असिंचित दशा में हमें कितना उर्वरक देना चाहिए खेतों को, और जल प्रबंधन के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दिया शर्मा जी ने। और आप लोग सुने भी होंगे, हमें आशा भी है कि बहुत लाभ उठाएंगे, अच्छी पैदावार करेंगे आप अपनी खेती में। तो आज बस इतना ही, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। कल तक के लिए, कल फिर हम एक नए अंदाज में, नए बिंदु पर और नई फसल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए पुष्कर को आज्ञा। जय हिंद।